वंदना के स्वर जब अंतस से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं। तभी तो ऐसा लगता है कि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता। होते हैं हजारों संत इस दुनिया में, हर संत विद्यासागर नहीं होता।
हृदयं देवं वन्दितात् वन्दपरिपूज्यम् उच्चम् अनुपेक्षावतोऽभिज्ञानं चरणं नलहरि
प्रतिमा। ये पांचवी प्रतिमा साथ चलता है। प्रतिमाओं के माध्यम से वह मुनिवर चर्या जो संलेखना कहना चाहिए वो पूर्ण कर लेता है। इसलिए स्वामी समर्थभद्र महाराज जी ने ग्यारहवीं प्रतिभा के धारण को भिक्षा सर ऐसा कहा। भिक्षा वृत्ति से उन्होंने अपनी पूर्ति कर लेता और अपने आप को एक संलेखना का पात्र बना लेता। तो अब सचित्त विरत यह प्रतिमा पांचवी प्रतिमा मानी जाती है। गाथा भयनक बंभनी दो गाथाओं के द्वारा इसका वर्णन है। सच्चित्तं पत्तफलं छल्लीमूलं च कितलयं बीयं दोनयथक्कलिनाणि सचित्तविरुदो हवेतो। ये पत्र फल छल्ली मूल कितलय बीज आदि जो कि सचित हैं उनका वह भक्षण नहीं करता ज्ञानी, इसी का नाम सचित विरत माना जाता है। स्वामी समर्थभद्र महाराज जी ने भी पंचवी पांचवी प्रतिमा के बारे में उल्लेख किया है। क्या किया, क्या किया है? मूल फल शाख शाखा करीर कंतक प्रसूर बीजानी नामानी यो तिसोयम न आमानी यह अति सह अयम सचित्त विरतः दया मूर्ति। इन्होंने ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। स्वामी समर्थभद्र महाराज ने दया की मूर्ति कहा। देखो मतलब अर्थ ये होता है, मूर्ति कहने का अर्थ ये है कि उस मूर्ति के प्रत्येक अंग उपांग में से लेकर के चोटी तक जो बांध दया ताकती रहती है। स्वामी समर्थभद्र महाराज की ये शब्दावली बहुत अच्छी लगी। ज्ञानी शब्द उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि वह व्यक्तित्व ऐसा है जिसे दया का साक्षात अवतार है, मूर्ति है। कि उस मूर्ति को देखने से दया क्या है अपनी आंख ही आंखों के सामने चित्रित होकर के रह जाता है। सोचो विचार करो, वह श्रावक पंचम प्रतिमा में सचित का भोजन नहीं करता, और आज सोचते हैं, देखते हैं, तो कोई विचार ही नहीं करता, चित्त का प्रयोग ही नहीं कर रहा, ये भी अचित हो गया। चित्त का प्रयोग नहीं करना अचित हो गया, मिला है लेकिन चित्त का प्रयोग ही नहीं कर रहा, क्योंकि अचित का भक्षण करने के कहा, मतलब अचित होकर के भक्षण कर रहे हैं सब लोग, निर्विकल्प होकर के कर रहे हैं। कहां से आया, क्या क्या आया, इसके बारे में कोई भी जानकारी, जानकारी नहीं कोई आ सकता। द्रव्य क्षेत्र का भाव देख करके अपने को करना चाहिए, ऐसा कि ये केंद्र की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पर सचित वनस्पति के बारे में कहा जा रहा है, किंतु आज बहुत ऐसे पदार्थ बाजार में आ गए हैं बंधु, उसके बारे में आप छानबीन करेंगे तो शायद आप क्षुब्ध भी होंगे अथवा अवाक भी रह जाएंगे, ऐसा भी संभव है। हाँ, आप लोगों के लिए क्या कहें कि ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं और ऐसे ऐसे विधाएं आ गई हैं, जिन विधाओं के माध्यम से असली और नकली का परीक्षण संभव नहीं हो सकता, जिह्वा के द्वारा भी नहीं, असली और नकली। दूध की बात हमने सुनी, सुनकर के रह गई कि ऐसा भी संभव, सिंथेटिक दूध आ रहा है, उसकी पहचान यह है कि उस दूध के द्वारा सब कुछ व्यंजन बन सकते हैं, लेकिन घी वर नहीं निकलता, बाकी सब आप पहचान नहीं सकेंगे कि यह सही दूध का दही बना हुआ है या नकली दूध का दही बना हुआ है, या आप नहीं पहचान सकेंगे। अब क्या सोचो, विचार करो, आप बाजार जाएंगे तो दही आपको मिल जाए और आप खाएंगे तो ज्ञात नहीं हो सकेगा कि यह दूध का बना हुआ है या नकली का या असली का, या आप नहीं बता सकते। उसके हालांकि यंत्र तो आए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति खरीदने वाला ये थोड़े ही यंत्र के द्वारा वो टेस्ट करता रहेगा, ये दशा आ गई है, आप सोचो विचार करो। अब नमक भी आपके लिए ऐसा मिल रहा कि सांभर नमक और वो परम नमक नहीं मिलेगा, कि आयोडीन से जो युक्त होता है वो मिलेगा, आयोडीन भी कहते हैं, दक्षिण में आयोडीन ही बोलते हैं। आप देखो उसको कैसे पहचान हो गया, नहीं पहचान, उसमें ही बताते हैं मछली का कोई संबंध, अंडा मछली मांस इन तीनों का भी संबंध उसके साथ है, बता रहे हैं। अब चुच्चू मत करिए आप, हाँ ये तो चुच्चू करने की बात ही नहीं है, नमक तो प्रतिदिन चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, मध्याह्न में चाहिए, रात में भी चाहिए, बिना नमक का कोई चलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी पेकिंग होकर के आता और उसको खरीद लिया, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। अब ऐसे तो हम नमक का आपको त्याग नहीं करा सकेंगे, और त्याग करें तो कोई काम चल नहीं सकता, लेकिन पैथिक कौन सी आ गई, पद्धति कौन सी आ गई, आप लोगों को सोचना चाहिए। अनिवार्य ऐसा हो गया तो इसलिए अब यहाँ तो एकेंद्रीय साग सब्जी वनस्पति की बात कही जा रही है और श्रावक दया का मूर्ति है, अब किंतु अब यह बात जब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, आंख मीच करके यदि उस प्रकार खरीदते चले जाएंगे तो कैसा बनेगा, कहां तो जीवानी करके एक बूंद को भी जो छना हुआ नहीं है तो उसको हम हाथ लगाना नहीं चाहते, और एकाध दिन यदि मान लो जीवाणी गिर जाती है या और किसी में और मिल जाती है तो प्रायश्चित के लिए श्रावक आ जाते हैं, महाराज अब क्या करें। किंतु आज यहां तो संगीत पंचेंद्रियों का ही संबंध जुड़ता जा रहा है, तो कौन सा उपदेश और किस ढंग से कहे ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब ये बहुत अच्छा समझ में आ जाता कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा रत्न का भंडार है, आत्मा का ये शरीर के साथ संबंध होते हुए भी ऊपर कहने में आता है, इसका इसमें, इसका उसका इसमें एक प्रदेश भी आता नहीं और जाता नहीं और आज तक हुआ नहीं, इसलिए दया को पुरुष कौन कर दिया, तो कोई बाधा नहीं। और दूसरी बात, आगम में लिखा हुआ है दया तो ये व्यवहार की वस्तु है, निश्चय में तो अपने आत्मा को देखना जानना यही सही निश्चय दया मानी जाती है। और निश्चय दया की चिंता है ही नहीं, और व्यवहार दया की बात पड़ी है महाराज जी को भी क्या वो समझ में नहीं आता। समय सार के अध्येता होकर के भी दया के बारे में इतने आप बात कर रहे हैं, अपनी कम से कम बात तो करते हैं आप निश्चय दया की बात, बिल्कुल ठीक है। निश्चय दया तक पहुंचने का कोई रास्ता भी होगा ना, रास्ता सीधा सीधा है और यूं समय सार खोल दो और यूं निकल जाएगा। और उसमें लिखा हुआ है कि निश्चय दया क्या है, व्यवहार दया क्या है। व्यवहार दया आनंद तो आज तक करते 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 आए, लेकिन आज तक निश्चय दया एक मिनट के लिए भी नहीं हुई। और निश्चय दया जब तक नहीं होती तब तक के लिए आप कितनी भी दया के अवतार की बात करो कभी मुक्ति मिलने वाले नहीं है। जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है उस दया की बात छोड़ करके ये बात करना भी कथनचित डायरेक्ट तो नहीं कर सके, लेकिन इनडायरेक्ट बात वही आती है जो संसार की बात बात बहुत अच्छी है। अब तो सिंथेटिक आत्मा भी आने वाली है। एक लेख पड़ा था उसमें कलमी आम और कलमी गुलाब फूल, कलमी सारी सारी चीजें बता दी, फिर इसके उपरांत जोक के रूप में मनोरंजन के रूप में लेखक ने व्यंग कर दिया। अब कुछ दिन के उपरांत कलमी बच्चे भी मिलेंगे, तब हमने कहा देखो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा तीर मारना हो गया कि कलमी बच्चे और आज देखने को मिल रहा है एक ही शक्ल की और एक ही माइंड की और एक ही आचार की और एक ही वर्ण के, ऐसे कृत्रिम आर्टिफिशियल मनुष्य का निर्माण करा दिया जाएगा। कितने वैरायटी चाहिए उतने और कितनी क्वांटिटी चाहिए उतने हम ले लो, फलाना चंद कितने नंबर, ये आ रहा, ये लेख सुनते हैं और पढ़ते हैं, यह आश्चर्य में डालने का युग आ गया। एक व्यक्ति चाहते हैं तो उनकी संख्या कितनी चाहिए आप ये मांग करिए, कितनी पीस चाहिए आपको, कितने किलो चाहिए, उतने आपको मिल जाए, कोई भी आपको फर्क नहीं मिलेगा। अब असली कौन और नकली कौन ये पहचानना आपके बुद्धि नहीं काम करेंगे, कहां नहीं करेंगे। तो एक आया था रेवती की कथा में बात आती है, सब लोग रेवती की बात आए, कहां गए थे आप, हम तो साक्षात समोचरण का दर्शन करके आ रहे हैं, भगवान बैठे हैं समोचरण है वो है ये है, और आप क्यों नहीं आई, समोचरण है। हाँ समोचरण है बिल्कुल, समोचरण को देख कर रहा नहीं हाँ? कि हम अपने आंखों से देख करके गलत हो गए, आंखों से देखने के उपरांत भी बुद्धि के द्वारा परखना चाहिए। आंखों में देखने में आता है और बंगाली जादू उसी को बोलते हैं जो आंखों के द्वारा देखने में आता एक रुपया यू लेता है वो चुप्पी से दर्जनी और अंगूठी से ये मिट्टी देखो हो गया देखो ये करता है वो यही से हम छोटे थे ये बहुत अच्छा है ये नोट के लड़िया लड़िया हो, वो बिल्कुल जो गोली के नोट होते हैं ना, उस प्रकार आसमान में फेंकता रहता है, सब लोग देख करके रह जाते हैं। बिल्कुल चांदी के रुपए बना देता, वो बना देता, ये बना देता, फिर इसके ऊपर जब खेल दिखाता, फिर भाई साहब अठन्नी, माँ साहब चवन्नी, शेजानी साहब दुआना, ये क्या है? जब आपने चांदी की रुपया बनाया, देर लगाया, वो कहां चले गए? इसको बोलते हैं जादू हाथ सफाई महाराज, उसको क्या कहते हैं? हाथ सफाई। हाथ सफाई को लेकर के आप माइंड सफाई मानते हैं, ये गलत बात है। विज्ञान के युग में हाथ सफाई को महत्व नहीं लेना चाहिए। माइंड वाले आप हैं, श्रद्धा के साथ सोचिए। रीति विज्ञान के युग में हाथ सफाई को महत्व नहीं लेना चाहिए। माइंड वाले आप हैं, श्रद्धा के साथ सोचिए। रीति एक तरफ और युग एक तरफ था। रोक्तिनी के रीति ने कहा कि पश्चिम से तीन शंकर कोई होने वाला नहीं है। और उसमें क्या, उसके बारे में ये कहा गया, अतिशय सारे के सारे हो सकते हैं, माया विश्व के दृश्यते सारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं होगा जो पंगु होता उसके लिए पैर नहीं मिलेंगे, जो अंधा होता उसके लिए आंख नहीं मिलेंगी, जो बहरा होता उसके लिए कान नहीं मिलेंगे, और जिसको बुद्धि नहीं है उसको बुद्धि तीखी नहीं हो सकते, और उस समझ करेंगे जाने की वो प्रांत शंका समाधान नहीं होता है, तो वह समो शरण नहीं, आज पर नहीं मिलेंगी। जो अंधा होता उसके लिए आंख नहीं मिलेंगी, जो बहरा होता उसके लिए कान नहीं मिलेंगे, और जिसको बुद्धि नहीं है उसको बुद्धि तीखी नहीं हो सकते, और उस समय चरण जाने की वो प्रांत शंका समाधान नहीं होता है, तो वह समो शरण नहीं। आज कुछ प्रश्न रखते हैं निश्चय वाणी के सामने, आत्मा की बात करने वाले इन शब्दों का थोड़े से उत्तर दो। नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं है, निरुत्तर अनुत्तर है वो अवतार। प्रश्न का जवाब जो व्यक्ति नहीं दे सकता, शंकाओं का समाधान जिस समोचरण में नहीं होता, उसको पेरे जाने कहती है रेवती रानी, और समोचरण नहीं है। जिसके यहाँ कान नहीं मिलते, जिसके यहाँ पैर नहीं मिलते, जिसके यहाँ और आंख नहीं मिलते, जिसके जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है, वह कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं माना जाता। केवल सुनते जाओ और उठ करके आ जाओ, ऐसा नहीं। सोचना चाहिए आप लोगों को कि यह जमाना कहाँ पर जाने वाला है। जब आप लोग व्यवहार को सुनियोजित नहीं बनाओगे, निश्चय का स्रोत व्यवहार है, इसको श्रद्धा के रूप में रखिए। पंक्ति पंक्ति में निश्चय का स्रोत क्या है, यह व्यवहार के ऊपर डिपेंड है। उसी आत्मा में से फूटने वाला है वह निश्चय, लेकिन वह व्यवहार में ढला हुआ जो आत्म तत्व है उसी के माध्यम से फूटेगा, तो वहीं पर फूटेगा, अन्यत्र नहीं फूट सकता। तीन प्रकार की बातें बता दें। एक अप्रतिक्रमण जो दो प्रकार का होता है, एक प्रतिक्रमण वह एक प्रकार का होता है, लेकिन कैसा अप्रतिक्रमण है वो, एक असैनियों का अप्रतिक्रमण कभी भी वह उस अप्रतिक्रमण तक नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि दो अप्रतिक्रमण निर्विकल्प समाधि रूप में है, वहां तक पहुंचने का यदि मेन रोड है तो वह प्रतिक्रमण ही है। वह प्रतिक्रमण यद्यपि विषकुंभ के रूप में आया है, लेकिन वह विष अमृत की ओर ले जाने वाला, उसके बाद ही वह अमृत का मिलने वाला है। और एक के पास जो विषकुंभ है वह हलाहल है, उसके द्वारा कुछ हलाहल कभी भी औषध नहीं हो सकता, ये लिख लो, हलाहल कभी औषध नहीं हो सकता, विष भी कभी औषध नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म सिद्धांत बताता है चार स्थान होते कर्म में, और हलाल वाला कभी भी उपदेश सुन नहीं सकता। विष वाला भी तृतीय स्थान वाला माना जाता, वह भी औषध के काम में नहीं आ सकता। विष पानी जो होता है वह विष होते हुए भी उपयोग में आ सकता है, मारक शक्ति का अभाव कर लिया जाता है। धतूरे को हम जो कि उसको सीधे खाएंगे तो विष है वह मृत्यु दे देगा, मारक है, किंतु धतूरे को कुछ रासायनिक तत्वों में डालने के उपरांत एक आध महीने और उनके अवधि के अनुसार उसका मारक तत्व जो है सब समाप्त हो जाता है, और मारक तत्व समाप्त होने के उपरांत विष पानी बन जाता, और विष पानी बन जाता तो वृक्ष का पात्र बन जाता। इस प्रकार यह व्यवहार जो कि प्रतिक्रमण रूप जो असंयम रूप है वह किसी भी प्रकार से निश्चय को प्रदान करने वाला नहीं है। वह व्यवहार जो द्वित पानी वाला होता है जिसके माध्यम से हमें वह अप्रतिक्रमण प्राप्त होने वाला है। बंधुओं, यदि आप लोगों का खान पीन के बारे में ज्ञान का उपयोग विवेक का उपयोग नहीं होगा तो जो समय सारे ग्रंथों में लिखा हुआ तत्व है वह तत्व आपके हाथ लगने वाला नहीं है, और वही बनारसी दशा जैसे आप लोगों की होगी। उस समय लाइट नहीं थी किंतु आज लाइट आ गई, ध्यान रखना बहुत आ गया, उनको अनुभव करके अंत में कहना पड़ा कि हम बिल्कुल गलत रास्ते पर थे। बहुत दूर होने के उपरांत फिर ट्रीटमेंट प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि गलत यदि प्रयोग हो जाता है शरीर के ऊपर फिर बाद में किसी भी चिकित्सा पद्धति का वह पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि शरीर के पास कैपेसिटी नहीं रहती, बुद्धि के पास भी कैपेसिटी, क्योंकि बहुत दिन तक दवाई लेता लेता चला जाता है तो फिर बाद में सही दवाई भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाती। ऐसा लगे दिन डूबने से पहले आप जाग जाओ, माना जाए अभी तो 3:15 बजे है, मतलब ये आप समझो दिन डूबने का अर्थ है कि बहुत वर्षों आपने इसी धंधे में निकाल दिया। व्यवहार ही जब आपका सुधर नहीं जाता है तो निश्चय कैसे सुधरेगा, कहां से आएगा निश्चय का स्रोत के बारे में आज तक कई लोग निश्चय की व्याख्या क्यों करते हैं, उस निश्चय और प्रतिक्रमण का स्रोत क्या है बता देते, ये प्रश्न की बात नहीं है, ये तो निरुत्तर है, वह तो अलग है। क्या अलग बताओ तो सही, यूं कहीं से अलग होने से तो अलग हो जाता है क्या, कुछ ना कुछ तुझको आधार तो होगा, निराधार कोई बात नहीं होती। तो आज कारण कार्य की व्यवस्था में वह पूरा का पूरा जो 50 वर्ष की साधना डूब गई है। कारण कौन से, किसका कारण क्या है, किसका कार्य क्या है, इसका उत्तर जो व्यक्ति स्वाध्यायशील होकर के नहीं देता और सही नहीं देता तो उसके स्वाध्याय को हम स्वाध्याय नहीं मान सकते। हाँ, वह बिल्कुल ग्राह्य है, माइंडेड व्यक्ति के सामने यह आर्ग्यूमेंट, यह एक प्रकार से तर्कना नहीं है कि किसका कार्य की हम प्रशंसा कर रहे हैं, अगर कारण का व्याख्यान नहीं किया जाता है तो कभी ये कभी वो ऐसा नहीं होता कि तराजू को हमेशा एक ही हुआ करती, नाप तो हमेशा वही होता, भले ही आप यहाँ की दुकान वहां पर लगा दो, वहां की दुकान वहां लगा दो, विदेश जाओ या देश जाओ, गांव में रहो या शहर में, कहीं भी जाओ, लेकिन नाप तो एक ही टेप पर रहना चाहिए, उसमें यदि कमी रहेगी तो ग्राहक कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकेगा। और जमाना वही आ गया, जमाना वही आ गया है, किंतु बहुत देर हो गया है, भूख मर चुकी है। अब जो आप कहो हम तैयार हैं, भैया अब तो अलग ही घुट्टी तैयार करनी होगी। देखो आप लोगों के भाग्य होगा, कुछ ऐसे तत्व होगा तो पकड़ लेगी वो दवाई और उसके माध्यम से कार्य हो सकता है। कारण कार्य की व्यवस्था में जो व्यक्ति फेल है वो तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से जनत्व को और उसके मर्म को सहन अपने ग्रहण नहीं कर सकेगा। सचित की बात आप कह रहे हैं, चित्त से सुनी, हाँ सचित की बात कह रहे हैं, चित्र से सुनिए है कि सचित्र है क्या, पत्र है, फल है, फूल है, छल्ली बखल वगैरह होते हैं, ऊपर के मूल है, गाजर मूले आदि आदि कंद वगैरह, किसले हैं, पत्ते वगैरह जो उसमें होते हैं, ऊपर ऊपर जिसको बोलते हैं, या बीज हैं आदि आदि का भक्षण नहीं करता जो सचित्र होते हैं। ज्ञानी वही माना जाता जो सचित्र विरत होता है, क्योंकि सचित्र से अचित्र बना करके लेने में जुब्बा इंद्र के ऊपर नियंत्रण आता है, जुब्बा इंद्र के ऊपर नियंत्रण आता है। जब किसी को टाइफाइड निकल जाए तो उसको निकाला क्या बोलते, निकाला निकाला बोलते हैं, तो निकाला बोलते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर लोगों का वैद्यों का भी यही कहना है कि इनको फल दो, लेकिन सुनो फल तो दो, सेव फल तो दे सकते हैं, लेकिन सेव फल बनार करके देना, और बनार करके ऐसा नहीं सब्जी नहीं देना किंतु साग देना, क्या बोलते हैं आपका साग, साग का क्या होता है, बाजार गए और 2-3 किलो साग सब्जी लिया, वो ये बता नहीं सुनते, बाजार गए और 2-3 किलो साग सब्जी ले आओ, साग भी मिलती है क्या, ये कहा गया है सब्जी ही आ जाती है, फिर इसके उपरांत इसको साग बनाया जाता है। साग का अर्थ क्या है, आग से जो शहीद हो जाता है उसका नाम साग है, सुन रहे हो क्या, नहीं, आग से जो शहीद हो जाता है वो साग होता है, बाजार में लौकी मिलती है और घर में साग मिलती है, हाँ ये नहीं खोज गए, जो शब्द से ही खोज है, आग से जो शहीद होता है वो साग है, और वो ये कहते हैं कि सेव की साग खा लो, मतलब उबला हुआ पानी उसमें भी सेव फल लेते हैं तो टाइफाइड में आपके लिए ठीक रहेगा, यदि साबुत खाएंगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं है, ये विज्ञान मानता है, क्योंकि उसका बुखार का पेट है और इसलिए वो बचा नहीं सकेगा, आंखों के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए, और हमारे आचार्य भी ऐसे कहते हैं सचित्र का त्याग कर दीजिए। इसका अपने आप में मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सचित्र खाने के उपरांत जो भीतर पेट में प्रक्रिया होती है और जो आग सहित जो साग लिया जाता उसकी प्रक्रिया में बहुत अंतर है, वह पित्त और कफ के ऊपर इसका पूरा प्रभाव रहता। तत्वा सूत्र की टीका जो कि राजवार्तिक के रूप में है उसने अकलंक देव ने उल्लेखित किया, सचित भोजन करने से क्या होता है, सांस खांस आदि व्याधि कारण अथवा श्वास चले, खांसी चले, जुकाम चले, वो करे ये करे, ये सब क्यों है, राजवार्तिक में है ये लिखा उन्होंने, इसलिए सचित का भोजन नहीं करना चाहिए, और जो त्यागी होता है वो अपने मन लगाना चाहता है, सामायिक करना चाहता है, व्रतों को निर्दोष रखना चाहता है और शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहता है, तो इसके लिए एक अनिवार्य है। जैसे मान लो आप सचित्र जल को पिएंगे, छान करके भले ही पियो लेकिन वह त्रस्तियों से रहित तो हो जाएगा, लेकिन वह अचित तो नहीं हुआ, वह जल जाने के उपरांत भीतर आपके पेट में जाने के उपरांत वह क्योंकि सचित होने के उपरांत योनि स्थान बन जाता, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होने की पूरी संभावना बनी रहती है, जिसके जठराग्नि कमजोर हो जाए फिर इसके उपरांत आम बन जाता, उसमें ये कहा उन्होंने कच्चा जो रस रह जाता उसी का नाम आम है, कोई रोग नहीं है, वो अग्नि के अभाव होने के कारण वह पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है और पुनः उसके ऊपर दोबारा भोजन कर लेते हैं, अब भोजन तो करना है, शाम तो करना है, नहीं तो रात हो जाए तो रात में हमें खाना नहीं है, इसलिए 12 घंटे के लिए तो हम नहीं ले सकेंगे, फिर उसमें और कच्चा माल चला जाता है और रात में वो जो कच्चा रह जाता पकता है नहीं, सुबह और गड़बड़ी, तो सुबह तो बाहर जाना है, ये करना वो करना, तो ले लो थोड़ी बहुत, तो फिर थोड़ी बहुत और ले लेता, ये तीसरा माल और चला गया,
इस प्रकार वो बारह एक बजे आ जाता है। क्यों करना, अब शाम को तो वहां पर जाना है, इसलिए भोजन कर लो। तो खाने की इच्छा नहीं, कोई बात नहीं है, कोटी दे लो वो खा लो। और चौथा और प्रोग्राम चला गया वहां पर। अब यू प्रोग्राम चला जाता है, आमानी न आमानी, वो आमानी कच्चा रह गया, रोग नहीं है वो कच्चा रह गया। जब कच्ची खिचड़ी रह जाए तो आप खा सको तो क्या बताऊ, नहीं खा सकते। उसी प्रकार ये है, तो कोई इसको रोग बना लिया, रोग नहीं है, उसको पहले पका लो। और पकाने की अग्नि है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल मान लो गोली दवाई इत्यादि के द्वारा पका देते हैं तो पकता है ही नहीं। फिर एक बार जड़ पैदा हो जाता है तो बंदे देखो परिणाम गोचर, फिर उसमें जो कुछ भी डालो वो उसी रूप में हो जाता है, वो परिणाम ही हो जाता है, बाकी सब परिणाम कर जाते हैं। जब वो इतना वरिष्ठ हो जाता है फिर वह क्रॉनिक बन जाता है, क्रॉनिक नहीं हाँ क्रॉनिक बन जाता है। पुराना बन गया, अब तो कुरान पढ़ो जाएगा नहीं हो। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अचित बनाओ, प्रासुत बनाओ। तो गर्म पानी और अग्नि से उबला हुआ जो कोई भी, अग्नि के द्वारा प्रासुक हुआ जो भोजन है, वो किसी भी प्रकार से पानी कम मांगता हो, क्योंकि उसके साथ पानी पहले ही चला गया। उसके ऊपर और पानी यदि मान लो गर्म पी लेते हैं तो गर्म पानी में 24 घंटे तक प्रासुकता बनी रहती। सुन रहे हो क्या, नहीं बाहर की बात नहीं है, पेट के भीतर की भी बात है। हाँ, तो वह यदि 24 घंटे वहां पर रहेगा निश्चित रूप से जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। मान लो सचित पदार्थ ज्यादा आपने ले लिया और गर्म पानी भी ले लेते हैं तो वह भी पानी उस सचित के योग में पूर्ववत बन जाता है, और योगिता बन जाता है। ये एक प्रक्रिया है, समूचे जीवों की उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है। हम इसको नहीं समझते, हम एकमात्र इतने ही समझते हैं कि इसके द्वारा कुछ होने वाला नहीं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। न आमानी अति सचित्रम पत्र इत्यादि न। हाँ, ये है जिसकी जठराग्नि तेज रहते वो। अब दूसरा ये है, स्वाद के अपेक्षा से आप देख लो, सेब फल आप साबुत खाएंगे, सेब फल को बना करके खाएंगे और सेब फल को साग बना करके खाएंगे। साग अकेले तो खाया नहीं जाए, रोटी के साथ अच्छी खाई जाए, साग रोटी, साग रोटी तो आप बोलते ही हैं, दोनों को जोड़ा है कर लो। नहीं अकेला अकेले खाना है तो साग तो ज्यादा खाई नहीं जाए, तो उतने दो तीन घंटे लगा लो, एक को ले लो, दो तीन रोटी खा ले तो साग भी हो गए रोटी भी हो गए, काम चल गए। लेकिन आप एक किलो यदि साग खाए तो ये संभव नहीं हो सकता। आप जो है खूब चार चार पांच पांच सेव कर जाते हैं तो सचित तो रहता है, पेट ऑपरा हो जाता, और क्या करें, हो गई निश्चित बात। अब स्वाद के कारण क्या ऐसा स्वाद लेते हो, देखो कच्चा स्वादिष्ट लगेगा और उबला हुआ स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ज्यादा खाए भी नहीं, आप ज्यादा तो खाना ही नहीं अपने को, ये है। तो जीवन लोलुप होने के कारण, अब मुनि बनना है तो ऐसे ही होगा, इसे शिक्षा मिलती है। अब एक 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 जीवा इंद्र को जितने चले जाओ सचित्व भी चल जाए, दो बार भी भोजन करेंगे तो भी उसमें ज्यादा नहीं खाया जाएगा, जितना आवश्यक हो उतना खा लिया, खाने योग खाओ। तो इससे श्वास है, खास है, और सामाजिक में एकाग्रता है, स्वाध्याय में एकाग्रता है, निरोग शरीर रहा तो कैसे रहा। और बैठ करके रहने वाले त्यागियों का वैसे ही डाइजेशन में अंतर रहता है, खाए और बैठ गए सामाजिक में, तो प्रक्रिया है, ज्यादा मेहनत नहीं करते। और माइंड की मेहनत के द्वारा जो पेट का कोई संबंध नहीं रहता, बल्कि यूं है ज्यादा माइंडेड हो जाते हैं तो वह स्टमक एक ज्यादा होने लग जाता है, पाचन खराब हो जाता है, ये निश्चित है। अब यदि मान लो कमजोर रह गया, तो चलना भी है और उपवास भी होते हैं। उपवास होने के उपरांत अपने आप ही जठराग्नि मंद हो जाती है। जठराग्नि कैसी मंद हो जाती है? सुबह मान लो आज तो सिगड़ी जला दी या चूल जला दी और शाम तक नहीं जलाए और कल सुबह तक, तो दोबारा ही उसको जलाना पड़ेगा। एक दो घंटे में अपने आप वहां पर आगे भी रहती है और काम भी चल जाते हैं। इसी प्रकार ही एक एक दिन में, दो दो दिन में जो भोजन करते हैं उनके लिए जठराग्नि बहुत सीमित रहती है। तो वो सीमित के कारण उन्होंने ये कहा कि अचित का ही प्रयोग करो और अग्नि के द्वारा पका हुआ लोगे तो अपने लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। इसलिए लाभप्रद रहेगा तो वह भीतर जाकर के योनि स्थान नहीं बनेगा। नहीं तो उन जीवों की उत्पत्ति होती है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी तो लेना ही चाहिए। यूनिस्तान बनता है तो वो उस प्रकार का भोजन नहीं करेगा, श्वास भी नहीं होगा, खास भी नहीं होगा और अन्य व्याधि भी नहीं होंगे और अपने आप में अच्छा ढंग से काम चलेगा। ये ऊपर ऊपर की अपेक्षा से नहीं, ये भीतर की अपेक्षा से भी। द्विदल का भी यही सिद्धांत है। द्विदल का सिद्धांत अपने आप में मनोवैज्ञानिक है, वो भीतर जाने के उपरांत इस प्रकार बनाता है। इसलिए आहार संयोजना, अन्नपान संयोजना और उपकरण संयोजना आ जाते ना दो, ये क्यों रखा है? इसलिए संयोजना से बचना चाहिए। ये पूरा पूरा जीव विज्ञान है इसमें। और इधर जुबा इंद्र का नियंत्रण, इधर पांच इंद्रियों को जीतना, अभी तो पहले ही इसको जीत लो तो पर वो सब जीत ही जाएंगे। हाँ एक अच्छा है, ये कंपल्सर जो है प्रश्न है, इसका उत्तर देना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दूसरे कारण दूसरे प्रश्न के तो उत्तर ले लेंगे, इसमें पास होना अनिवार्य है तो ही आगे जाकर के वह मुनि और आर्य का कर सकते। शिक्षा दीक्षा व्रत से पहले ये शिक्षा व्रत है। कुछ लोग कहते हैं पहले शिक्षा दे दो, कल को शिक्षा व्रत ले लो फिर बाद में देखें। कई लोग कहते हैं महाराज आप तो दीक्षा की बात पहले कर रहे थे, शिक्षा की बात करते नहीं, हम तो शिक्षा व्रत की पहले बताते हैं, पहले श्रावक बनो फिर बाद में मुनि बनो या हरि का बनो। कई लोग दूसरी प्रतिमा से थ्रू सेवन सातवी दूसरे से सातवी सातवी से क्या बीजी के वो स्टेशन ही नहीं उन लोगों के, इनका बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। शिक्षा व्रत के जो सूक्ष्मता के बारे में अध्ययन यदि करना चाहे तो इन प्रतिभाओं के माध्यम से ज्ञान होता चला जाता है। सो की प्रसिद्ध अभी शब्दात न केवल अग्रेसर श्रावक सचित व्यर्थ सचित जल फलादिप्यो व्यर्थ विगत राग निवृत्त। और ठंडा पानी पीता है उसके लिए प्यास ज्यादा लगती है और उबला हुआ जो पानी पीता है उसके लिए कम लगता है। सचित को खाने से पानी पीने से ज्यादा पानी इसलिए लगता है कि उसको पुनः जाकर के डालना पड़ता है। और इससे क्या होता है, इससे ऐसा नहीं होता, इसमें उसमें कोई भी दूषण उत्पन्न नहीं होते इसलिए बहुत देर तक ये काम करते चले जाते हैं। इसके द्वारा वात पित्त वगैरह सब रह जाते हैं। उबला हुआ पानी से वात पित्त वगैरह सब रहते हैं और कच्चा पानी से वात पित्त वगैरह गड़बड़ हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। हाँ आप उबले हुए पानी में और कोई भी चीज मिला दो तो उसमें प्रक्रिया देख लो, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि एक विषय है, यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ज्ञात होगा। उबले हुए पानी में कोई आटा वगैरह डाल दो, कच्चे पानी में आटा डाल दो, किस ढंग से घुलता क्या घुलता। आप उबले हुए पानी में और कोई भी चीज मिला दो तो उसमें प्रक्रिया देख लो, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि एक विषय है, यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ज्ञात होगा। उबले हुए पानी में कोई आटा वगैरह डाल दो, कच्चे पानी में आटा डाल दो, किस ढंग से घुलता क्या घुलता। हमें तो याद है जो रोटी बनाते हैं वो कच्चे पानी से नहीं बनाते, सुनो तो पहले आप देखेंगे, ये थोड़ी थोड़ी बात तो कर दे, साइंस है ये, विज्ञान है। उसमें उस आटे में सर्वप्रथम जो उबला हुआ पानी के द्वारा जो कनक बना लेते हैं उसको मिला करके फिर बाद में पानी डालते हैं, ये बात अलग है, लेकिन पहले तो पक्का पानी से उसको बना देते हैं। जो उबला हुआ पानी के द्वारा जो कनक बना लेते हैं उसको मिला करके फिर बाद में पानी डालते हैं, ये बात अलग है, लेकिन पहले तो पक्का पानी से उसको बना देते हैं उसको, हाँ हाँ तो आप जानते हैं। हाँ तो ये उसका ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। उसी प्रकार जो सारे तरह उबला हुआ यदि पानी चला जाएगा तो उसकी प्रक्रिया पेट में अलग होगी, उसके द्वारा उसको किसी प्रकार से परेशानी वात पित्त कफ में गड़बड़ियां नहीं आएंगी, सुपाच्यों का उनको पछता रहता ऐसा। इसीलिए जो सचित और सूखे द्रव्य है उन सूखे द्रव्यों को भी नहीं लेने के लिए मना किया। यदि मान लो सचित बीज है, यूनिवर्स सचित, उसको साबुत नहीं खाओ, वो अग्नि से संस्कारित हो, जैसे मान लो लाई है, और लाई और मक्का तो सचित माना जाएगा, बीज है, और लाई जो है वो लाई, क्योंकि वह अग्नि के साथ जुड़ गया। अब इसके उपरांत वो पानी ज्यादा चाहता है क्योंकि वह सूखा है, अग्नि से तो वह सिक गया, सिकना और पकना बहुत अंतर है। अब जानते हैं जिसमें पानी का अंश ज्यादा है तो वह पका हुआ मानता है, और जो केवल जो अग्नि से सिक गया हो तो सूखा, वह सूखा माना जाता है। उसके लिए पानी लोटा और लोटा लोटा और चाहिए। शाम को मान लो चने के ढूंढा जो खा लो तो फिर रात में देख लो, दिन में भी खाएगा तो ज्यादा पानी पिएगा। तो उससे बढ़िया तो यह है कि जो पका हुआ पानी में पका हुआ है पानी, वो सचित नहीं रहेगा, उसको खाएंगे तो दोबारा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो वह पानी ऊपर से भी हम पका हुआ पानी पहुंचा देते हैं, उसके द्वारा भीतर जो कुछ भी रह रहा है वो और पक जाएगा तो काम हो जाता है। देखो खिचड़ी पक रही है, उसमें यदि मान लो पानी कम पड़ गया, समझदारी की बात सुन ले, इसमें उसमें ठंडा पानी दे दोगे तो खिचड़ी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझे। अब असावधानी के कारण कि मान लो थोड़ी सी पानी कम पड़ गई और खिचड़ी अभी पकी नहीं और ठंडा पानी उसे मिला लो तो दोनों को वो बिगाड़ देगा, ठीक है या नहीं, ठीक है ना, सत्ता ठीक है। इसलिए उसको नाम राशि ठीक बनाओ, तो वह पका हुआ अनपका है तो इस पानी जो उबला हुआ है उस पानी को मिला दो तो वह मेकअप हो जाएगा, कॉम्बिनेशन उसका बन जाएगा, नहीं तो ठंडा पानी मिला दोगे तो दोनों बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग कुछ चीजें ठंडी खा जाते हैं और कुछ चीजें गर्म खा जाते हैं तो वहां पर खिचड़ी पक जाती है भीतर और पकती नहीं, ठीक हो। यह रहस्य की बात है, है? इतने दिन खाते पीते हो गई, ये भी जानते ही है तो कैसे। मूलाचार्य भी ये कहा कि जिस व्यक्ति को आहार का ज्ञान, विहार का ज्ञान, निहार का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति कभी भी श्रमणत्व को अंगीकार नहीं कर सकता। हाँ ये पहले आवश्यक है, स्वयं चिकित्सक बनो, दूसरे की चिकित्सा तो बहुत करते हैं लोग, स्वयं करो। ये इसलिए रहस्यपूर्ण है कि आज पाक शास्त्र को ही सब उठा दिया, जानकारी कुछ नहीं, बच्चे जैसे करते हैं लोग सब, है रोम साइंस तो बिल्कुल होना चाहिए, ये रोम साइंस पढ़ने के लिए जा रहे है। डबल खर्च भी हो रहा है, व्यय भी समय का भी व्यर्थ खर्च हो रहा है, फिर भी स्वास्थ्य ठीक है क्या नहीं।
माने हैं नहीं, जाने हैं नहीं, ऊपर से और बातें सुना देते, क्या करें। सूप प्रसिद्ध अभी सफर न केवल मकृत्र सावक सचित वृत सचित तेजो जग फलादिव्य वृत विगत राग निवृत्त भवे। यह ज्ञानी भेद विज्ञान विवेक गुण संपन्न, जो ज्ञानी होता श्रावक भेद विज्ञान को जानता है, और भेद विज्ञान को जिसको जानता है वह सचित से परहेज करता है, उससे बहुत अच्छा जीवन चलता है। श्रावक न बक्षते न अस्नाति, क्या नहीं खाता, किम तक सचित्तम चित्तेन चैतन्येन आत्मना जीवेन सह वर्तमानम सचित्तम, जिसमें चेतनता रहती है और चेतनता के कारण उसके साथ उनका जीवन नहीं बन पाता। देखो एक भेद विज्ञान की बात कह दी इन्होंने, जो भेद विज्ञानी होता है वही सचित्त का सेवन नहीं करता। भेद विज्ञान का केवल तत्व ज्ञान के साथ नहीं लगाना चाहिए, भेद विज्ञान का प्रयोग सचित्त के त्याग के साथ लगाना चाहिए। ये कई शिक्षा वृत्तों में ज्ञानी ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं, एक कार्तिकीय शिक्षा, हाँ ज्ञानी ज्ञानी के तीन चार बार प्रयोग आया और वो शिक्षा वृत्तों में ही आया है। हाँ ज्ञानी का अर्थ यही है कि वह किस किसका भोजन करे किसका भोजन न करे। चित्तेन चैतन्येन आत्मना जीवेन सह वर्तमानं सचित्तम किं तत् पत्रफलम् सचित्त नागवल्ली दल लिंब पत्र सर सर्षप चनक आदि पत्र, ये हो गया धतूर आदि दल पत्र शाकादिकं न अश्नाति, इसमें सब आ गए, फल फूल भी आ गए, पत्ते भी आ गए, शाक भी आ गए, धन भी आ गए, सारे सारे आ गए। सबसे ज्यादा आज साग सब्जियों का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा साग सब्जियों का प्रयोग होता है, आज साग सब्जियों के माध्यम से काम निकालते हैं। लेकिन 20 25 30 वर्ष पूर्व में शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, जो बाजार का दिन होता है, बाजार का दिन लाए साग सब्जी दो या तीन दिन ज्यादा ज्यादा, लेकिन हमेशा हमेशा नहीं लिया जाता। इसका अभी भी हमें ज्ञान हुआ कि अष्टमी के दिन, दशमी के दिन, ग्यारस के दिन और अमावस्या पूर्णिमा के दिन प्रतिपदा या गुरु के दिन, इस प्रकार उन्होंने एक पक्ष में कि लगभग जो है पांच छह दिन निकाला है, पांच छह दिन उन दिनों में, ये वैज्ञानिक ने कहा है ध्यान रखना, उन दिनों में उपवास की प्रथा है। कोई ग्यारस में उपवास करता है, कोई सप्तमी को उपवास करता, कोई अष्टमी को उपवास करता, कोई चौदस को उपवास करता, कोई अमावस्या पूर्णिमा के दिन करता, कोई तीज को भी पकड़ लेता, इस ढंग से उन्होंने डिटेल दिया। इन दिनों में उपवास की प्रथा भारतीय संस्कृति में क्यों, उन्होंने हेतु दिया, उसने ये हेतु बहुत सशक्त हेतु दिए हैं, इन दिनों में उपवास करने का क्या था? उन दिनों में चंद्र तत्व अपने उफान पर रहता है। चंद्र तत्व का अर्थ होता है जल तत्व, सूर्य तत्व का अर्थ होता है अग्नि तत्व, ये दोनों तत्व अपने नासिकाओं में विद्यमान हैं। नहीं समझे कि दाहिने जो है सूर्य तत्व माना जाता है और बाएं जो है चंद्र तत्व माना जाता है। अब इन दिनों में चंद्र तत्व का जब उफान रहता है तो उपवास करने से जल तत्व अपने आप ही नीचे आ जाएगा और अग्नि तत्व जो है बढ़ जाएगा, तो उसको उसकी समीकरण पद्धति ठीक हो जाती है। इस यह पूरा का पूरा स्वास्थ्य सिद्धांत इसके ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए तो उपवास नहीं कर सकता तो वो क्या करे, तो वह एकासन कर ले। एकासन भी यदि नहीं कर सकता तो क्या कर ले, तो उनकी जो है जलो उपवास कर ले, शाम को जल ले लें और यह कर लें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकता तो क्या कर लें, तो वनस्पति का उन दिनों में त्याग कर लें। हरि का त्याग जो सिद्धांत जीनियों के यहां आता है, यह अपने ही नहीं है, अन्य उपनिषद और पुराणों में भी आप देखेंगे आलू गाजर मूली तक तो पराव देते हैं। सुनिए आप लोग,
जो जठराग्नि कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, उसमें कारण यह है, विशेष रूप से आप ठंडी चीज ज्यादा सेवन करेंगे तो आपकी जठराग्नि मंद होगी। सुबह उठते ही अपने ढंग से जो चलते ऐसा नहीं करना, खान पीन ये दुआ तस्वर नहीं करना। तो ये कि प्यास को बुझाने के लिए बार बार जो आप पी लेंगे रस वगैरह, उसके द्वारा जठराग्नि मंद होगी, और जठराग्नि मंद होगी तो आप रोटी नहीं खा सकेंगे, रोटी नहीं खा सकेंगे तो आपका शरीर चलने वाला नहीं। हम फल फूल से निकाल लेंगे, क्या निकाल देंगे, जल तत्व बढ़ जाएगा, और चंद्रमा की उपासना ज्यादा करोगे तो सूर्य तत्व बिगड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, भूखी नहीं लगा, भूखी नहीं लगा, कहां से आई हो, बाहर से थोड़ी आ रही, भूख का अर्थ यही है जठराग्नि तेज होना चाहिए, हमने अपनी तरफ से उस अग्नि तत्व का उपशमन करा दिया, गड़बड़ हो जाता कि हमेशा उद्दीपन होना चाहिए। ये स्वास्थ्य का एक प्रतीक, कहां से आई हो, बाहर से थोड़ी आ रही, भूख का अर्थ यही है जठराग्नि तेज होना चाहिए, हमने अपनी तरफ से उस अग्नि तत्व का उपशमन करा दिया, गड़बड़ हो जाता कि हमेशा उद्दीपन होना चाहिए। ये स्वास्थ्य का एक प्रतीक, कई लोग जल का तो जल ही नहीं पीते, रस तो पी जाएंगे लेकिन जल ही नहीं पीते, तो पानी तो है, ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो जाता है, उसके द्वारा यह सारा सारा बिगड़ रहा। तो उनका ये कहना था कि इन तिथियों में समुद्र, इन तिथियों में समुद्र का पानी जैसे उफान पर हो जाता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वैज्ञानिक तथ्य है कि 70% से 80% तक जल तत्व रहता है, 70 से लेकर 80% जल का बढ़ाव ज्यादा करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए अब ध्यान लगाओ, विगत उपायित व अज्ञान, उपवास करो, एकाशन करो, या जलोपवास कर लो, या वनस्पति का क्या कर लो, वो कर लो, जो वनस्पति को भी विशेष रूप से आहार बना देता है उसका भविष्य चिंत है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये फल फूल का कीड़ा नहीं है, लग नहीं है, ये अन्न का कीड़ा है, नहीं समझते, शरीर तो है, फल फूल का कीड़ा नहीं है, साग सब्जी का कीड़ा नहीं है, ये तो अन्न का कीड़ा है, इसी के मालिक है। बहुत न एक व्यक्ति हमें मिले, यद्यपि यह जेल साइंस भी यही कहता है कि कलकत्ता वाले आए थे एक वैद्य, अच्छे सात्विक, मतलब कि कलकत्ता वाले आए थे एक वैद्य, अच्छे सात्विक, मतलब प्रतिदिन उठते ही जैसे आप लोगों के आवश्यक पलते हैं उसी प्रकार वो आवश्यक करके ही फिर बाद में वैदिकी काम करते हैं। तो वो आए, स्त्री की बात है, चातुर्मास हमारे चल रहा है, तो उन्होंने कई बातें सैद्धांतिक और आध्यात्मिक सब बातें कर दी, एक बातें उनके बहुत अच्छी लगी, उनका कहना था कि हम चातुर्मास में उनके घर में कोई भी साग सब्जी खरीदी नहीं जाते, सुन रहे हो क्या, नहीं, चातुर्मास भर में पूरी चातुर्, तो वो आए, स्त्री की बात है, चातुर्मास हमारे चल रहा है, तो उन्होंने कई बातें सैद्धांतिक और आध्यात्मिक सब बातें कर दी, एक बातें उनके बहुत अच्छी लगी, उनका कहना था कि हम चातुर्मास में उनके घर में कोई भी साग सब्जी खरीदी नहीं जाते, सुन रहे हो क्या, नहीं, चातुर्मास भर में पूरी चातुर्मास में, उनका कहना था कि चातुर्मास में तो यह लेना ही नहीं चाहिए, और यदि लेते भी हैं तो अपने यहां भी आ जाता कि जो भाजी पाला बोलते हैं आप लोग पत्तेदार, उनको नहीं ले जाता, और फल वगैरह जो होते हैं जो लटकने वाले तोलाई तोते उनको ले सकते हैं, फिर भी वैद्यों का कहना है आयुर्वेद के हिसाब से इसमें नया पानी आता है,
नया पानी आने के कारण वह नया पानी जैसे नदियों में आता है तो जुकाम के लिए इत्यादि के लिए कारण बनता था, उसको संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार वनस्पति को हम संशोधित कर ही नहीं सकते और उसका डायरेक्ट जो है अपने खून तक प्रभाव चला जाता है, वह सब डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए लेना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी अपने को मिले और अपने यहाँ कहाँ कौन से महीने में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आया, सावन साग बादो मही क्वार करेला कार्तक दही, नहीं छोड़ो तो नहीं मरो तो पढ़ो सही, ये बुंदेलखंड की दुआ है, हमने इसी की नहीं आपसे सुनी है, और भी कई बातें हैं। अब इसके विपरीत हम तेरे तो कहते नहीं मरेंगे तो पड़े सही, तो कोई काम नहीं करेगा, वो बड़े बड़े क्या करेगा खाट पर उतर। अपने तरफ से अपयम करने से ऐसा होगा। उसी समय पर श्रावण में जो गाय भैंस वगैरह जानवर हैं वे नए नए घास खा लेते हैं और उनके दूध के ऊपर भी असर पड़ता है, इसलिए श्रावण में दूध नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी कहावत है। हाँ बछड़े भी जो है ना, तो बछड़ों को भी विदेश ज्यादा दस लगते हैं बछड़ों को भी, हाँ लगते ही छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उनको भी दस लगते हैं ज्यादा, तो अब मनुष्य को क्यों नहीं लगे। ये सिद्धांत है अपने, सब गड़बड़े हो रहा। अच्छा मूल छल्ली वृक्ष वल्यादि सचित्त, अच्छा मूल छल्ली वृक्ष वल्यादि सचित्त स्वक, वृक्ष के ऊपर से जो बक्खल वगैरह रहते हैं वो सारे सारे भी काम में आते हैं, तो उनका वो भी सचित्त नहीं करना है। मूलम आद्रक आदि लिंबादि वृक्ष वल्ली वनस्पति नाम, अच्छा मूल छल्ली वृक्ष वल्यादि सचित्त, अच्छा मूल छल्ली वृक्ष वल्यादि सचित्त स्वक, वृक्ष के ऊपर से जो बक्खल वगैरह रहते हैं वो सारे सारे भी काम में आते हैं, तो उनका वो भी सचित्त नहीं करना है। मूलम आद्रक आदि लिंबादि वृक्ष वल्ली वनस्पति नाम मूलम न खादती, जो वो आर्द्र रहते हैं अदरक वगैरह जो नीचे की जड़ें होती हैं कुछ खान पीन में आते हैं उनको भी वह सचित नहीं लेता है। मूलम ने खा देते किसलयम पल्लवम लघु पल्लवम कुंभलम न आते, और किसलय बहुत कोमल जैसे रहते हैं नीम के रहते हैं आम के रहते हैं और कोई भी वनस्पति के रहते हैं, तो उनका पल्लव को भी नहीं खाते। बीजम सचित चना चना है सचित है, कमुद्रित लवार्जित माषार कुवेल राजी गोधूम ब्री आदि का, ये जितने भी आप लोगों के धान्य हैं मोट हैं मूंग हैं बाजरा हैं ज्वार हैं और ये सारे सारे हैं। अब देखो ये मतलब अपने यहाँ कि जानवरों के लिए भी सचित्त खिलाते हैं या खा जाते हैं, तो जानवर भी इन धान्यों से स्वस्थ नहीं रहते, हाँ उनको भी दस्त वगैरह लगने लग जाते हैं, हाँ सीधे 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 उनको पचता नहीं है वो, इसलिए किसान लोग भी इनको सचित्त नहीं खाते जो कितने भी हो, किसान लोग भी इनको नहीं खाते किंतु उनको उबाल करके ही खाते, जिसको घूगला वगैरह बोलते हैं आप लोग,
घूगरी घूगरी
किसानों का खाद है ये
घूगरे,
उसमें सब साबुत रहते हैं, लेकिन साबुत होकर के जब तक उसको पकाते नहीं उबालते नहीं तब नहीं कर सकते। ये कौन से एक रीत आवे पता नहीं आता, नहीं आता। किंतु एक पैसे और आई है, जो ये पैसे कुछ ऐसे हैं कि जो अंकुरित करके भोजन करा था उसके माध्यम से भी बहुत गड़बड़ियां हो जाती है। सुनने में आया था या पढ़ने में आया था, स्मरण में नहीं, किंतु गांधी जी ने गेहूं चना इत्यादि जो साबुत ही उनको उबाले बिना लेना प्रारंभ कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप उनके पेट के डाइजेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि मनुष्य के लिए यह उपयुक्त नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन वह चिकित्सा के लिए कहा गया है, ये ध्यान रखो, चिकित्सा के समय पर कहा गया है, चिकित्सा के अपेक्षा से कह सकते, लेकिन वो भी ठीक नहीं, कई कई स्थानों पर वो गड़बड़ होगा, उसके पैसे अपने आप में अलग थे। जितना उबला हुआ होगा वो अपने पेट के आंतों के लिए उपयुक्त होता है, वो और कोई भी सिद्धांत नहीं आज तक के, तो यही। इसलिए अंत में युग के अंत में अग्नि का अभाव सो युग का अंत माना है, अग्नि का अभाव सो युग का युग का अंत माना है। धर्म का अभाव तो अंत है ही, लेकिन असीमसी कृषि वाणी शिल्प विद्या और ये अग्नि आदि का अभाव होना ये युग का अंत, धार्मिक युग का अंत माना गया। इसलिए आज धीरे धीरे अग्नि चली गई है, अग्नि की कटौती बहुत हो गई आज, आज गैस के ऊपर चल रहे हैं आप, ध्यान रखना गैस और अग्नि में बहुत अंतर है, गैस और अग्नि में बहुत अंतर है, गैस और अग्नि में बहुत अंतर है। कालांतर में वो पका हुआ सा जो लगता है लेकिन वो पका हुआ नहीं, जैसे अग्नि के द्वारा भी सेक होती है, लेकिन समझने की बात है, सेक दो प्रकार की होती है, अग्नि के द्वारा सेक होती है और बर्फ के द्वारा भी सेक होती है। बर्फ के द्वारा कोई पदार्थ पकता नहीं है, ध्यान रखना, पका करके दिखाओ, सेक तो होती है, सेक का अर्थ इतना ही है उसको तो परमाणु तक सूक्ष्म तक ले जाता है और वह इकाई तक पहुंच जाता है, जीरो तक, उसके कारण वहां पर उस चमड़ी के ऊपर अपने आप उस अंग के ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो पकता नहीं है, वह संकुचित करके उसमें से विकार निकाल देता है और ये प्रसारण करके निकालता है। तो प्रसारण का होता है वो अपने लिए कालांतर में बाधक नहीं होता, किंतु वर्ष के दर जो सेक होते हैं वो और अपने आप में बहुत भयानक होते, वह असह्य भी होते है? हाँ हाँ, अब घुटे को आप सेक कर दो बर्फ के द्वारा, खानी हो गया, मूंगफली को सेक लो बर्फ के द्वारा, सेक लो ना, ये तो कह रहे गैस के द्वारा भी वो सिकता नहीं। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि बर्फ की सिकाई के द्वारा और गैस की सिकाई के द्वारा सत्तु वगैरह नहीं बन सकते। आप हर बात में हंसी है नहीं, सत्तु का अर्थ है सत्ता। हाँ, आप अपने सत्ता को कायम रखना चाहो तो उसके देख लो उसके क्या काम, उसमें पूरा का पूरा तत्व रहता है, तत्व रहता है। तो यह चनक इत्यादि भी नहीं का उक्तं च मूल पर शाक शाका च करीर कंद प्रतूर बीजानी नामानि योति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति प्रासुकम कचदा इति उच्यते। प्रासुक कितने होते हैं? तप्तम तप्त करके, पक्वम पका करके, सुकम सुका करके, अंबिल दबने ही मीतियम दबम अमृत और लवण आदि आदि द्रव्यों के द्वारा मिश्रित करने से भी हो जाता। जम जनते छिन्नम, यंत्रों के द्वारा तो छिन्न हो जाता, छिन्न भिन्न इत्यादि, तम सबम पासुयम धनियम, वो सारा सारा पासुक हो जाता है। इसलिए सचित्र से बचने के लिए ये होना चाहिए। अब जैसे मान लो गट्टों के बारे में भी आप सोचते हैं, गट्टे बना लेते हैं, केले के गट्टे, ये केले के गट्टे यंत्र के द्वारा या चाकू के द्वारा बना देते हैं, यह सचित से अचित नहीं हो सकता। हाँ, उसमें जहां जहां पर बने है, आपका जो चाकू बनाने के जोर के जो लगा है वहां पर बने ही घर्षण हो जाए, लेकिन पूरा जो गट्टा रह गया उसमें तो जोंक अत्यंत रहता है। अब यदि मान लो आप रस निकालते हैं, तो रस निकालने का अर्थ होता है वो पूरा का पूरा फॉर्म ही बदल जाता है जनते के द्वारा। इसलिए सचित से अचित बनाने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और तभी वह आकर के अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से और इंद्रियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस दृष्टि से सही लायक हो जाता, नहीं तो नहीं हो सकता। वैसे साबुत कोई जेड़ा वगैरह नहीं खाता, दो तीन टुकड़े बना करके ही खाते। अब दो तीन टुकड़े करने का अर्थ सचित से अचित का हो तो फिर क्या हुआ, मुख से ही टुकड़े करते ही खाते सब। मुख से तीन टुकड़े का लो हो गया, सचित से अचित हो गया। अब दास को यंत्र ही तो है और बोलता है। समय आपका हो रहा है। इतना ही रखो, समय हो।